कपड़े का कोई हिस्सा नापाक हो जाए, मसलन आस्तीन का कोई जुज नापाक हो गया, या दामन, कपड़े का जो दामन है उसमें कोई हिस्सा नापाक हो गया, नापाकी खुश्क हो गई। अब खुश्क होने के बाद ये जहन में नहीं आ रहा कि कौन सा हिस्सा राइट साइड पे नापाक था या लेफ्ट साइड पे नापाक था, ये समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसी सूरत में फिर क्या किया जाएगा? इसमें थोड़ी सी तफसील मैं आपको अर्ज करता हूं। पाक कपड़ा मसलन कमीज, चादर या कंबल वगैरह का कोई हिस्सा, मसलन आस्तीन का कोई एक जुज नापाक हो गया और कपड़ा खुश्क होने या निशान मिट जाने की वजह से अब यह मालूम नहीं हो रहा कि कौन सा हिस्सा पाक और कौन सा नापाक है, उसमें बेहतर तो यह है कि उस पूरे ही हिस्से को पाक कर लिया जाए। जैसे आस्तीन का एक हिस्सा नापाक था, ये नहीं याद आ रहा कि कौन सा है, तो पूरी ही आस्तीन को पाक कर लें। या कपड़े में ये नहीं समझ आ रहा कि नापाकी कहाँ लगी थी, लेकिन ये पता है कि लगी थी, तो पूरा ही कपड़ा धोकर इसे पाक कर लिया जाए। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि कपड़े के नापाक हिस्से के बारे में कुछ गौर व फिक्र करें, याद करने की कोशिश करें कि कौन सा जुज या कौन सा हिस्सा नापाक हुआ था। गौर व फिक्र करने से जन्ने गालिब जिस हिस्से के बारे में हो जाए उस हिस्से को पकड़ कर पाक कर लिया जाए और फिर उसमें नमाज पढ़नी है तो नमाज पढ़ लें। अगर एक या चंद नमाजें पढ़ने के बाद याद आ गया कि मैंने तो इस तरफ से धोया है जबकि नापाक यहां से था, तो ऐसी सूरत के अंदर अब इसे पाक कर लिया जाए और गौर व फिक्र करके जो नमाजें पढ़ी थी वो नमाजें हो जाएंगी। और तीसरी इसकी एक और सूरत ये होती है कि गौर व फिक्र नहीं किया और ये याद भी नहीं था कि कपड़े का कौन सा हिस्सा नापाक है, बस खुद से ही पकड़ कर बगैर गौर व फिक्र के उस कपड़े को धो लिया और नमाज पढ़ ली, और बाद में पता चला कि जिस तरफ से धोया है वहां से नापाक नहीं था, दूसरी तरफ से नापाक था, तो चूंकि ये गौर व फिक्र के बगैर धोया था तो अब इसको पाक कर ले और जो नमाजें इसके अंदर पड़ी हैं उन नमाजों का इयादा भी करना लाजिम होगा। फर्क आखिरी दो सूरतों में सिर्फ ये हुआ कि दूसरी सूरत के अंदर गौर व फिक्र के बाद नमाजें पड़ी थी तो नमाज का इयादा लाजिम नहीं, और तीसरी सूरत के अंदर गौर व फिक्र नहीं किया था और धोकर नमाज पढ़ ली, तो ऐसी सूरत के अंदर नमाजों का इयादा भी लाजिम होगा।